दिन भर, आज है तारीख 22 सितंबर दिन मंगलवार। मैं हूं रेहान फदल। इंटरनेट पर जानकारी के आदान प्रदान को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी लागू होने से पहले वापस ली गई।
मैंने स्वयं जब इस पूरे ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़ा तो ऐसा मैंने पाया कि 2-3 शब्द ऐसे थे जिससे अनावश्यक आशंकाएं पैदा हो रही हैं।
1965 सीरीज की 22वीं और आखिरी कड़ी में चर्चा ताशकंद समझौते की। देखेंगे हाजी पीर वापस देने के फैसले को किस तरह से लिया था लोगों ने।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन कॉरेस्पोंडेंट थे उनको बात कही, वो इतना शास्त्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, यहाँ ये क्या किया, आपने देश को बेच दिया, वो क्या।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा ने। भारत सरकार ने नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी के मसौदे को वापस ले लिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद ये जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसे और विचार विमर्श के बाद दोबारा जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की आज़ादी बरकरार रखी जाएगी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने बीबीसी से कहा है कि भारत सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार साझा उपक्रम पर भी विचार कर रही है और अच्छा प्रस्ताव मिलते ही एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया जाएगा। जर्मनी ने वाहन एमिशन स्कैंडल में फंसी कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन से पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए कहा है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेयर्कल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तथ्य जल्द से जल्द सामने आएंगे। फॉक्सवैगन ने कहा है कि दुनिया भर में उसकी 1,10,00,000 कारों में वाहनों की प्रदूषण जांच के दौरान तथ्य छुपाने वाला सॉफ्टवेयर लगाया गया है। ब्रिटेन ने समूचे यूरोप में फॉक्सवैगन स्कैंडल की जांच की मांग की है। सोमवार के बाद से फॉक्सवैगन कंपनी के शेयर 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। कंपनी का कहना है कि उसने इस समस्या से निपटने के लिए $7 अरब का फंड निर्धारित किया है। मार्केटिंग और जनसंपर्क विशेषज्ञ लियाम बैटमैन मानते हैं कि ये कंपनी की ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा,
This is a big, big issue for the brand, Volkswagen on a global scale.
ये विश्व स्तर पर फॉक्सवैगन ब्रांड के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अंततः ये विश्वास का मामला है और उन्होंने अपने बहुत से ग्राहकों को चोट पहुंचाई है। मीडिया और सोशल मीडिया की पहुंच के कारण ये दुनिया भर में फैल रहा है। बुर्किना फासो में तख्तापलट करने वाले विशेष सैन्य गार्डों को दी गई चेतावनी का समय बीत गया है। गुरुवार को हुए प्रेसिडेंशियल गार्डों ने तख्तापलट में नागरिक सरकार को अपदस्थ कर दिया था। बुर्किना फासो की नियमित सेना राजधानी ओगाडोगू में इकट्ठा हो रही है। नागरिकों से घरों के भीतर रहने के लिए कहा गया है। तख्ता पलट करने वाले जनरल डिंडेरे ने पत्रकारों से कहा है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के तख्ता पलट करने वालों को माफी देने के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। ये सम्मेलन नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था UNHCR ने चेतावनी दी है कि यूरोपीय संघ के 10,000 अप्रवासियों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव मौजूदा संकट से निपटने में नाकाफी साबित होंगे। संस्था के प्रवक्ता मेलिसा फ्लेमिंग ने यूरोपीय संघ से ग्रीस में प्रवासियों के लिए आगमन केंद्र खोलने की अपील की है। प्रवासियों को यूरोपीय देशों में बांटने के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए ब्रसेल्स में आज यूरोपीय संघ की बैठक होगी। दुनिया भर से पहुंचे लाखों तीर्थयात्रियों ने सऊदी अरब के मक्का शहर में सालाना होने वाला हज शुरू कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। इंटरनेट पर जानकारी के आदान प्रदान को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से बनाई जा रही नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी लागू होने से पहले ही वापस ले ली गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये पॉलिसी नहीं बल्कि उसका एक मसौदा था और अब उसे भी वापस लेकर उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। पर नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी है क्या और इससे लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद जब पत्रकारों से रूबरू हुए तो नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी से जुड़े सवालों से घिर गए। सरकार की सफाई में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह की इंक्रिप्शन पॉलिसी लागू है पर भारत में ऐसी कोई नीति नहीं है, इसीलिए एक विशेष समिति ने इस पर चर्चा की और पॉलिसी का मसौदा बनाया। पर यह सरकार की पॉलिसी नहीं है।
मैंने स्वयं जब इस पूरे ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़ा तो ऐसा मैंने पाया कि दो तीन शब्द ऐसे थे जिससे अनावश्यक आशंकाएं पैदा हो रही हैं। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी को आप विड्रॉ करें, पुनर्विचार करने के बाद ये स्पष्ट करें ये किन पर लागू है किन पर लागू नहीं है।
तो आखिर क्या है इनक्रिप्शन और उस पर देशव्यापी नीति की क्या जरूरत है? इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग आमतौर पर रोजाना कई तरीके की जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर सारी जानकारी को एक और शून्य के मिश्रण में समझता है। जिस जानकारी को एनक्रिप्ट कर भेजा जाता है वो इससे कई गुना ज्यादा जटिल अक्षरों में बदल दी जाती है और इसे हासिल करने के लिए हजारों पासवर्ड्स में से एक सही पासवर्ड ढूंढना होता है। यानी वित्तीय लेनदेन से जुड़े काम में जानकारी ऐसे ही सुरक्षित की जाती है और इसके बारे में सिर्फ व्यक्ति और कंपनी को पता होता है। तो अब सरकार क्या चाहती है? आईटी मामलों के जानकार आशुतोष सिन्हा।
अलग अलग देशों की सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए या फिर जो भी ऑनलाइन जानकारी है लोगों की से जुड़ी जो उनकी बिजनेस की जानकारी है कंपनियों के बीच ही ना रहे, उन तक पहुंचे और इस ढंग से पहुंचे कि वो कानूनी जामा पहनाकर वो उसे अगर चाहे तो रोक सके या फिर कानूनी कार्रवाई कर पाए।
भारत सरकार की पॉलिसी में लोगों को आपत्ति इस बात से हुई कि इसमें सोशल मीडिया पर भेजी जा रही जानकारी पर भी सरकार की नजर थी। सोमवार को ऑनलाइन किए गए नेशनल एन्क्रिप्शन पॉलिसी के मसौदे के मुताबिक व्हाट्सएप, वाइबर, स्काइप, वीचैट जैसी सोशल मैसेजिंग सर्विसेज के मैसेजेस को हर उपभोक्ता को 90 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा और अगर सरकार मांगे तो उनकी जानकारी मुहैया करानी होगी। इस पर सूचना प्रसारण मंत्री ने आज सफाई देते हुए कहा,
एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं ऐसे एप्लीकेशंस का, वो इंक्रिप्शन के दायरे से अलग होते हैं।
आशुतोष सिन्हा के मुताबिक नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी की जरूरत तो है पर सरकार के मसौदे में जितनी जानकारी मांगी जा रही थी वो व्यावहारिक नहीं लगती।
गलतियां भी काफी थी और मैं हैरान हूँ कि कैसे ऐसा लेजिस्लेशन जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जो कि आगे की दिशा तय करता है ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के लिए, उसको इस ढंग से क्लियर किया गया सरकार में किसी भी लेवल पर।
सरकार की मंशा चाहे कुछ और हो पर आम लोगों में यही समझ बनी कि इस नई पॉलिसी के जरिए निजता के हनन की कोशिश की जा रही है और सरकार की सफाई आने से पहले फेसबुक पर #ModiDon'tReadMyWhatsApp और ट्विटर पर एनक्रिप्शन पॉलिसी ट्रेंड करने लगा। इसीलिए अब सरकार ने पुनर्विचार की प्रक्रिया में आम लोगों की राय लेने का भी फैसला लिया है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
गोमांस पर प्रतिबंध के कानून को दोबारा लागू करने के अदालती आदेश ने कश्मीर में राजनीतिक माहौल तो गर्मा दिया है लेकिन साथ ही अलगाववादियों ने भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों का रुख कर लिया है। बीजेपी समर्थन वाली मुफ्ती सईद की गठबंधन सरकार भी इस मुद्दे को लेकर परेशान है क्योंकि मुफ्ती और बीजेपी ने इस मुद्दे पर अलग अलग लाइन ली है। इस बीच VHP ने धमकी दी है कि अगर इस कानून को खत्म किया गया तो जम्मू में कश्मीरियों की आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आर्थिक नाकाबंदी की धमकी का मतलब है कि जम्मू के रास्ते कश्मीर आने वाली सप्लाईज को रोका जाएगा। 2008 में जब हिंदुओं के अमरनाथ श्राइन बोर्ड को सरकारी जमीन अलाट की गई तो कश्मीर में आंदोलन छिड़ गया जिसके बाद जम्मू में भाजपा, RSS और VHP के समर्थक घुटू ने कश्मीर की आर्थिक नाकाबंदी की थी। इस बार ये धमकी गांव मास पर प्रतिबंध के करीब 100 वर्षीय कानून को राज्य में लागू करने के अदालती आदेश के संदर्भ में दी गई है। अदालती आदेश पर बहस तो जारी है लेकिन VHP की ताजा धमकी सामने आई तो कश्मीर में एक नई अस्थिरता का डर फैलने के साथ साथ नागरिकों में गुस्सा पाया जाता है।
मुसलमान का पहनावा ये बदल दिया जाता है, मुसलमान का खाना पीना ये बदल दिया जाता है, कल को बोलेंगे कि धोती लगा के हमारे पास आओ तभी हम सड़क पे चल ले देंगे, ये हरगिज़ नहीं हो सकता।
अगर इस तरह का कुछ हुआ तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी खतरा है और यहाँ पे हालात बहुत खराब हो जाएंगे क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो बोलेंगे कि हम मुजफ्फराबाद से मींस ट्रेड जो हमारा चल रहा है वहाँ से चीज़ें लाएं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की, इन चीज़ों को ये होने दे रहे हैं।
हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है और ना ही कोई करना चाहता है।
इस बीच कश्मीर के व्यापारी संगठनों ने VHP की धमकी की कड़ी आलोचना की है। और कहा है कि जम्मू के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने वीएचपी की धमकी पर कान नहीं धरा है और वो कश्मीरियों के साथ व्यापारी रिश्ते बनाए रखेंगे। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ नेता शेख आशिक कहते हैं,
वीएचपी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे लाइक दाना पानी बंद करेंगे कश्मीरियों का, जैसे 2008 में किया, तो फिर तो हमारे लिए अल्लाह का एक जरिया है कि वो एलओसी रूट हमारा मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये हमें मजबूर कर रहे हैं, आए दिन ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आज
अदालतें गांवमास पर प्रतिबंध के 83 वर्षीय कानून से पर्दा हटा लिया तो घाटी में राजनीति का तिकुनी युद्ध छिड़ गया। अपोजिशन पार्टियों ने विधानसभा में इस कानून को खत्म करने के लिए बिल लाने की बात की है। एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने अदालत में विरोधी रिट दायर की है, जिस पर अदालत ने सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कल तक का समय दिया है। इस हंगामे का तीसरा मोर्चा अलगाववादियों ने संभाला है, जो बकरीद के दिन गली गली में गाय काटने की बात करते हैं। वीएचपी की आर्थिक धमकी के विरोध में लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक ने आज लाल चौक में भूख हड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। मिस्टर मलिक ने कहा कि आर्थिक नाकाबंदी की धमकियों से सांप्रदायिक युद्ध का खतरा बढ़ गया है।
जिस तरीके की धमकियां आती हैं, जाहिर है कि एक लोगों पे एक जंग मुसल्लत की जा रही है, ताकि इस पूरे जम्मू कश्मीर को क्रिमिनलिज्म की जंग में जो है धकेला जाए। अब ये क्रिमिनलिज्म की आग जो है ये कौन लगा रहा है यहाँ? ये तो हिंदू शोविनिस्ट फोर्सेस है जो यहाँ पर क्रिमिनलिज्म की आग लगा रहे हैं।
गौरतलब है 2008 में जब जम्मू की संघर्ष समिति ने आर्थिक ब्लॉकेट किया और कश्मीर आने वाली खुराक और दूसरी सामग्री को जम्मू में ही रोक दिया, तो कश्मीर में कई महीनों तक आंदोलन चला और मुफ्ती सईद की पीडीपी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार को गिरा दिया। आज भी इस मुद्दे से गठबंधन सरकार पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने तो कह दिया है कि अदालती आदेश को लागू किया जाएगा, लेकिन पीडीपी के नेता और मंत्री इमरान रजा अंसारी ने कहा है कि कश्मीरी गांव मांस इसी तरह खाते रहेंगे जिस तरह वो खाते थे। अब सबकी नजरें 3 अक्टूबर को शुरू हो रहे विधानसभा के अहम सत्र पर हैं, जिसके दौरान गांव मांस पर प्रतिबंध वाले इस कानून पर जमकर बहस होगी। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएचएम के घोटाले के मामले में सीबीआई के मायावती से पूछताछ के सिलसिले में उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है कि वो किसी न किसी केस में उन्हें फंसाकर उसका राजनीतिक फायदा उठा सके, लेकिन इस दांव का नुकसान उन्हें खुद ही झेलना पड़ा है। एक रिपोर्ट के साथ प्रगति सक्सेना।
लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बहुत साफगोई से बात की। लगभग 40 मिनट चले इस सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के कहने पर नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर संविधान से कोई छेड़छाड़ की तो उनकी पार्टी देशव्यापी आंदोलन छेड़ देगी,
और यदि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण की इस मानवतावादी संवैधानिक व्यवस्था से कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर इसके खिलाफ हमारी पार्टी पूरे देश भर में देशव्यापी जन आंदोलन छेड़ देगी।
मायावती ने नरेंद्र मोदी की सरकार को आरएसएस की कठपुतली बताया और कहा कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों बड़ी पार्टियों की नीति पिछड़ी जातियों के खिलाफ ही रही है।
दोनों ही पार्टियों की आपसी मिलीभगत व जातिवादी साजिशों के कारण ही आरक्षण की सुविधा को अब न केवल निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया है, बल्कि दलितों को वर्षों से मिल रही प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा को भी लगभग समाप्ति कर दिया गया।
कल ही सीबीआई के ये कहने पर कि वह एनआरएचएम घोटाले में उनसे पूछताछ कर सकती है, उन्होंने कहा कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं। उस वक्त जो भी फैसले किए गए वो मंत्रिमंडल के फैसले थे, मुख्यमंत्री के नहीं, और उन्हें तो इस बात पर अचंभा है कि 4 साल बाद सीबीआई इस मुद्दे पर उनसे क्यों बात करना चाहती है।
लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद कल अचानक सीबीआई को मुझसे पूछताछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है, जबकि सीबीआई व बीजेपी को भली भांति ये बात मालूम है कि एनआरएचएम से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है।
मायावती ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी किसी गंभीर काम पर ध्यान नहीं दे रही
और इन्हें केवल घर वापसी व लव जिहाद एवं अन्य धार्मिक उन्माद वाले कार्यक्रम ज्यादा पसंद है।
मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश में चरमराती कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वे उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने में लगी है और ये सब तब हो रहा है जब यूपी के विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है।
कुल मिलाकर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साफ राजनीतिक संदेश लिए थी कि एक अरसे से चुप रही बसपा को हल्के में न लिया जाए, आगामी चुनावी गतिविधियों के लिए ये भी लामबंद हो रही है।
मायावती का संवाददाता सम्मेलन।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। 1965 सीरीज की 22वीं और आखिरी कड़ी में जिक्र ताशकंद समझौते का, जिस पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत किए थे। इस समझौते के करवाने में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन की भी निर्णायक भूमिका रही थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों को जीती हुई जमीन लौटानी पड़ी थी। 3 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिनिधिमंडल से 2 घंटे पहले राष्ट्रपति अयूब का प्रतिनिधिमंडल ताशकंद पहुंचा। सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान को बराबर का दर्जा देने के लिए खासी मेहनत की थी और दोनों टीमों के नेताओं को लगभग एक जैसे आलिशान ढांचा में ठहराया गया था। खुद प्रधानमंत्री कोसिगिन पिछले कई दिनों से ताशकंद में मौजूद थे और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। कोसिगिन को पहला झटका तब लगा जब 3 जनवरी को ही अयूब ने उन्हें सूचित किया कि अगले दिन जब वो शास्त्री से मिलेंगे तो उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अयूब को इस बात का डर था कि उनकी शास्त्री से हाथ मिलाती तस्वीर जब पाकिस्तानी अखबारों में छपेगी तो इसका उन पर बुरा असर पड़ेगा। फ्रॉम कश टू ताशकंद के लेखक फारूक बाजवा ने बीबीसी को बताया।
अयूब की इस बात पर कोसिगिन बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि एक सरकार के प्रमुख के तौर पर शास्त्री सम्मान के हकदार हैं और अयूब को इससे उन्हें महरूम नहीं करना चाहिए। कोसिगिन का रुख देखकर अयूब ने अपना विचार बदल दिया था।
जब 4 जनवरी को अयूब और शास्त्री पहली बार मिले तो उस मौके पर कोसिगिन, अयूब और शास्त्री ने भाषण दिए। शास्त्री के भाषण पर काफी तालियां बजी। सिर्फ एक शख्स ने ताली नहीं बजाई, वो थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फकार अली भुट्टो। सीपी श्रीवास्तव शास्त्री पर लिखी अपनी किताब में लिखते हैं,
भुट्टो से ताली बजवाने के लिए अयूब को उन्हें बाकायदा कोहनी मारनी पड़ी। ताशकंद समझौते से दूरी बनाने की भुट्टो की ये पहली सार्वजनिक कोशिश थी। 5 जनवरी को अचानक पता चला कि ये भुट्टो का जन्मदिन है। पाकिस्तान के सूचना सचिव अल्ताफ गौहर ने उसी समय उनके लिए एक छोटी जन्मदिन पार्टी आयोजित की, लेकिन वहां मौजूद लोग साफ देख पा रहे थे कि उस दिन भुट्टो का ध्यान ताशकंद के अलावा कहीं और था।
उस समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे शंकर वाजपेयी, जो बाद में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त बने।
भुट्टो और अजीज, खासतौर से अजीज अहमद, वो तो बड़े कट्टर थे इन बातों में। दोनों ने बड़ी टफ लाइन ली थी। बल्कि पहले तो अयूब और शास्त्री जी मिले थे 2-3 घंटे के लिए अकेले। फिर उन्होंने फैसला किया था कि दोनों डेलीगेशन मिलकर बात करें। तो सरदार चरण सिंह हमारे लीडर थे और भुट्टो साहब वहाँ के थे, तो हम लोग पूरा आफ्टरनून उसी पर लगे। उस वक्त उन्होंने जाहिर कर दिया कि कुछ नहीं मानने को तैयार है सिवाय कश्मीर सेटलमेंट। ना हम कश्मीर सेटलमेंट करने को तैयार थे, ना उनके बाकी डिमांड्स मानने को तैयार थे, तो इसलिए टॉक्स ब्रेक डाउन किए थे। उसके बाद हमारे डेलीगेशन में ख्याल था कि शायद 2 लीडर्स फिर से मिले। पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया कि अब क्या फायदा मिलने से। तब कोसिगिन साहब ने अपनी डिप्लोमेसी शुरू की।
सबसे पहले बात शुरू हुई जीती हुई जमीन वापस करने के बारे में। शास्त्री ने कोसिगिन से कहा,
हम आत्मरक्षा के तौर पर हाजीपीर पर कब्जा करने के लिए बाध्य हुए थे ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। अगर हम वहां से हट जाएं तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से उस इलाके से हमारे इलाके में घुसपैठ शुरू नहीं कर देगा। मैं समझता हूं कि हाजीपीर खाली करने के बारे में आप हमारी मुश्किलों को समझेंगे, दूसरी जगहों को खाली करने के बारे में बात की जा सकती है।
कोसिगिन ने भी अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था। उन्होंने शास्त्री को जवाब देते हुए कहा,
हम हाजीपीर के बारे में आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन अगर आप वहां से नहीं हटे तो पाकिस्तान छंब और दूसरे भारतीय इलाकों से नहीं हटेगा और आप लाहौर और सियालकोट सेक्टर से नहीं हटेंगे। इस हालत में कोई समझौता नहीं हो पाएगा और आपको खाली हाथ अपने देश लौटना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या हाजी पीर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि संभावित युद्ध की कीमत पर भी आप इस पर बने रहना चाहेंगे?
अगले दिन शास्त्री ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण से बात की। उन्होंने भी कहा कि हाजी पीर के मुद्दे पर शांति की संभावना को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कुलदीप नैयर याद करते हैं,
कुशीगन ने इसमें इनिशिएटिव लिया तो शास्त्री जी पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि शास्त्री जी चलने से पहले सब जो कहते थे आप जो मर्जी कीजिए, हाजी पीर और तत्वाल नहीं देना इनको वापस, शास्त्री जी के दिमाग में तो था। तो उन्होंने कुशीगन से बात की, क्योंकि रशिया ही हमारे साथ था, सोवियत यूनियन जो वीटो इस्तेमाल करता था। उसने कहा देखिए ये फ्रूट्स ऑफ एग्रेशन है, ये वर्ड्स थे उसके, तो अब ये एग्रेशन में जो लिया वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि देखिए वो कितना लड़ाई का रहता है सब कुछ, तो ये फिर करेंगे। वो कहता है देखिए यूएन चार्टर है, दूसरा है, वो तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी हम मदद नहीं कर सकते। अगर आप यही स्टिक किया तो फिर हमें वीटो जो है आपके खिलाफ करनी पड़ेगी। तो अब शास्त्री जी उसके बाद उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया।
7 जनवरी को अयूब और शास्त्री के बीच 2 छोटी-छोटी बैठकें हुईं, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। अयूब का जोर कश्मीर पर था, जबकि शास्त्री उस पर शिखर बैठक के दौरान औपचारिक रूप से कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं,
अचानक अयूब ने शास्त्री से उर्दू में कहा, कश्मीर के मामले में कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भी अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं। शास्त्री ने बहुत विनम्रता लेकिन मजबूती से कहा, सदर साहब मैं बहुत माफी चाहता हूं कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता।
आखिरकार कुशीगन की मध्यस्थता रंग लाई और अयूब और शास्त्री अंतिम सत्र की बातचीत के लिए राजी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से आए समझौते के मसौदे में लिखा गया था,
दोनों देशों के बीच सभी मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हल किए जाएंगे। शास्त्री ने जोर दिया कि इस टाइप्ड मसौदे में अयूब अपने हाथ से जोड़े बिना हथियारों का सहारा लिए हुए। अयूब ने ऐसा ही किया। बाद में जब भुट्टो ने अपने भाषणों में ताशकंद समझौते की गुप्त शर्तों का जिक्र किया तो संभवतः उनका आशय इसी हस्तलिखित नोट से रहा होगा जिसे अयूब ने शास्त्री के जोर देने पर अपने हाथों से लिखा था।
9 जनवरी की आधी रात को सोवियत विदेश मंत्री क्रोमिको के पास एक संदेश आया कि भुट्टो उनसे टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं। सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं,
क्रोमिको फोन पर आए। दूसरे छोर पर भुट्टो कह रहे थे कि मसौदे से हथियार न इस्तेमाल करने की शर्त हटा दी जाए। ये सुनते ही आम तौर से संयत रहने वाले क्रोमिको का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि इस पर अभी थोड़ी देर पहले ही अयूब और आपने सहमति दी है, अब इससे पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है और ऐसा करना बहुत बहुत बुरा होगा। आप फौरन इस बात को अपने राष्ट्रपति तक पहुंचा दीजिए। क्रोमिको का कड़ा रुख देखकर भुट्टो ने अपनी बात पर जोर नहीं दिया,
लेकिन भुट्टो ने इस समझौते को राजनीतिक तौर पर बहुत भुनाया और इसकी शुरुआत उन्होंने ताशकंद से ही कर दी। समझौते पर दस्तखत होने के बाद वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने ताली नहीं बजाई। यहां तक कि जब अयूब भाषण दे रहे थे भुट्टो बार बार अपना सिर हिला रहे थे, मानो कह रहे हों कि इस समझौते से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर इस समझौते की भारत से भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई।
मुझे याद है कि उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनको बात कही, वो इतना शास्त्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, या क्या ये क्या किया आपने, देश को भेज दिया वो किया, तो आई हैड टू इंटरवीन। मुझे याद है मैंने कहा भाई यू आर एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सवाल जो आप पूछ सकते हो ह्यूमिलेट थोड़ा कर सकते हो। लेकिन वो जब आए वापस घर पे, मतलब ढांचे में, तो उन्होंने कहा अरे भाई वेंकट रामन उनका सेक्रेटरी होता था, वेंकट रामन देना दिल्ली को, दिल्ली में टेलीफोन बनाया गया, तो कहता है अम्मा जी से, अम्मा जी कहा करते हैं अम्मा जी से, तो उनकी लड़की आई बड़ी, वो कहती है अम्मा जी बात नहीं करेंगे, आपने हाजी पीर और तत्वाल लिख दिया। तो कहने लगे अरे भाई ये घर वाले जब इतना क्रिटिसाइज करते हैं तो बाहर वाले तो क्या करेंगे। कृष्णा मैंने का एक स्टेटमेंट आया था जो, वो कहता है ठीक है इनका तो कहना ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो दिल पे उनके लगी, दिस वॉज वन ऑफ द रीजन दैट ही गॉट द हार्ट अटैक।
कुछ ही घंटों के अंदर शास्त्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका देहावसान हो गया। जब शास्त्री के ताबूत को भारत ले जाने के लिए गन कैरेज से उतार कर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उनको कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां भी थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद न तो भारत को कुछ मिला और न ही पाकिस्तान को। इतना खून बहने के बाद भी कश्मीर के नक्शे में 1 मिलीमीटर का भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या ये एक निरर्थक लड़ाई थी? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के श्रीनाथ राघवन कहते हैं,
हर वॉर जो है एक लेवल पे फ्यूटाइल होता ही है। इस वॉर की फ्यूटिलिटी इस बात में थी कि पाकिस्तान ने जो कैलकुलेशंस बनाए कश्मीर मसले को फोर्स के हिसाब से सुलझने के लिए, वो हमेशा ही गलत थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पावर की डिस्पैरिटी थी वो साफ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस और मिसजजमेंट की वजह से ये वॉर शुरू किया। और इंडिया का जो हैंडलिंग था, खासकर डिप्लोमेटिक टेबल पे, खासकर शास्त्री जी ने ताशकंद में किया, वो मेरे नज़रिए से उसने भारत के डिप्लोमेटिक पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया और कश्मीर के मसले में हमारा जो अपर हैंड आज तक बना रहा है उसको बरकरार रखा।
ये याद रखा जाना चाहिए कि इस जंग की असल कीमत न तो राजनेताओं ने चुकाई और न ही आला सैनिक अफसरों ने। इसका असर झेला दोनों तरफ के आम सैनिकों और आम नागरिकों ने। प्रूसिया के एक सैनिक विचारक कार्ल वॉन क्लॉसविट्स ने अपने सम्राट से एक बार कहा था कि जंग का उद्देश्य जीत नहीं, शांति होता है। 1965 की जंग न तो पाकिस्तान के लिए जीत लेकर आई और न ही भारत के लिए शांति। साहिर लुधियानवी की कुछ पंक्तियां जहन में आती हैं। सीरीज की आखिरी कड़ी। ये कड़ी और पूरी सीरीज आपको कैसी लगी जरूर लिखिएगा। इसको आप दोबारा सुन सकते हैं कल सुबह विश्व भारती कार्यक्रम में। और अब एक नजर खेल समाचारों पर आदेश कुमार गुप्त के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ATP वर्ल्ड टूर टेनिस टूर्नामेंट में से एक चेन्नई ओपन का आयोजन अगले साल 4 से 10 जनवरी तक चेन्नई में होगा। इस टूर्नामेंट में दो बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका भी अपना खिताब बचाने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। वैसे उनके पास खिताबी हैट्रिक बनाने का अवसर भी होगा। वहीं पिछले दिनों डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में भारत चेक गणराज्य से 3-1 से हारा, लेकिन इसके बावजूद उसे डेविस कप ग्रुप 1 एशिया ओशियाना क्षेत्र में शीर्ष वरीयता दी गई है। इस क्षेत्र में भारत के बाद उज्बेकिस्तान को दूसरी वरीयता दी गई है। दोनों देशों को पहले दौर में बाई मिलेगी। भारत और उज्बेकिस्तान के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को भी एशिया ओशियाना ग्रुप ए में जगह मिली है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम का अभ्यास शिविर बेंगलोर में कल से शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी, वहीं पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जहां वो 2 20-20 और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी कहते हैं,
मैं तो कभी भी किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, स्पेशली 2020 फॉर्मेट में। जिम्बाब्वे नो डाउट अच्छा खेल रही है, उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं की कंडीशन में हो रही है मैच। इससे पहले भी लास्ट जब हमने होम सीरीज खेली थी यहाँ पे, उसमें भी कोई इतने इजिली हम नहीं जीते थे।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच वैसे पहला 2020 मैच 27 तारीख को खेला जाएगा।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
भारत सरकार ने नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी के मसौदे को वापस ले लिया है। जर्मनी ने वाहन एमिशन स्कैंडल में फंसी कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन से पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए कहा है। भारत सरकार की कैबिनेट ने अमरीकी कंपनी बोइंग से 37 हेलीकॉप्टर खरीदने के $2.5 अरब के सौदे को मंजूरी दे दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की तिलक राज भाटिया ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।